नमस्कार भारत, तारीख 2 जुलाई दिन शनिवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। ढाका के बेहद सुरक्षित इलाके में चरमपंथियों ने एक कैफे पर बोला धावा, 20 विदेशियों समेत बहुत से लोग बंधक बनाए।
रेस्टोरेंट मैनेजर एंड अदर पर्सन टोल्ड अस दैट एट लीस्ट 20 फॉरेनर्स।
चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली हमले की जिम्मेदारी। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से तबाही।
पूरी जमीन धस गई, पूरा ऊपर से धसाव आ गया, तो एक अनएक्सपेक्टेड लाइन पर हुआ है, इसलिए जान की ज्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है।
मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान में छुआछूत के शिकार एक हिंदू पत्रकार से, और होंगी खबरें विंबलडन की भी, लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक कैफे में हथियारबंद हमलावरों ने करीब 20 विदेशियों को बंधक बना लिया है। ढाका से मिली रिपोर्ट के मुताबिक बंधक बनाए गए विदेशियों में से ज्यादातर इटली के नागरिक हैं। पुलिस बंधकों की रिहाई के लिए हमलावरों से बातचीत में जुटी है। पुलिस के मुताबिक कैफे पर हमला कल रात 9:20 पर हुआ। इस हमले में कम से कम 2 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई, जबकि 30 अन्य लोग घायल हो गए हैं। इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अमरीकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि बीते महीने इराक के मोसूल शहर में अमरीकी गठबंधन सेना के हवाई हमले में इस्लामिक स्टेट के 2 प्रमुख चरमपंथी मारे गए हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इनमें से एक संगठन के उपमंत्री और दूसरे वरिष्ठ कमांडर थे। प्रवक्ता ने बताया कि गठबंधन सेना ने मोसूल के दक्षिण के इलाके को चरमपंथियों से मुक्त कराने का अभियान शुरू कर दिया है। इराकी सेना ने हाल में ही फलूजा को इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण से मुक्त कराया है। अमरीकी प्रशासन ने बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए आम लोगों का आंकड़ा जारी किया है। जनवरी 2009 से दिसंबर 2015 के बीच ऐसे हमलों में 64 से लेकर 116 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े पाकिस्तान और सोमालिया जैसे देशों की हैं, जहां अमेरिका ने चरमपंथी समूहों को निशाना बनाया। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ड्रोन हमले में मरने वालों की वास्तविक संख्या कहीं ज़्यादा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नेस ने कहा,
The president believes that our counter-terrorism strategy is more effective and...
राष्ट्रपति का मानना है कि जब हम यथासंभव पारदर्शी होते हैं तो हमारी चरमपंथ को रोकने की रणनीति ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा विश्वसनीय होती है। मेरा मानना है कि ये एक संकेत है कि हम ऐसी स्थिति में हैं जहां ऐसे अभियानों के निर्णय लेने की प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं, और इन अभियानों के नतीजों को लेकर सिर्फ अमरीकी लोगों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साथ पारदर्शिता बरत रहे हैं, वो भी तब जबकि नतीजे पूरी तरह हमारे इरादों के मुताबिक नहीं रहे हैं। ये थे जोश अर्नेस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री मेलकम टर्नबुल ने मतदाताओं से कंजर्वेटिव पार्टी के गठबंधन के पक्ष में वोट देने को कहा है। उन्होंने टैक्सों में कमी लाने और आर्थिक प्रगति का वादा किया है। उन्हें लेबर पार्टी के नेता बिल शॉर्टन से चुनौती मिल रही है। अफ्रीकी देश गिनी बिसाऊ के प्रशासन ने जीका वायरस के 3 मामलों की पुष्टि की है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी की हिंदी सेवा से कार्यक्रम नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव, और आपके साथ आज मैं अशोक कुमार। आज की सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से, जहां कल रात चरमपंथियों ने एक रेस्तरां पर हमला किया और बहुत से लोगों को बंधक बना लिया। बंधकों में 20 विदेशी नागरिक भी बताए जाते हैं। रात भर सुरक्षा बलों को कोशिश करते रहे सुरक्षा बल बंधकों को छुड़ाने की, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। जबकि चरमपंथियों से निपटने की कोशिश में 2 पुलिस अफसर मारे गए हैं, जबकि 30 अन्य घायल हो गए हैं। हाल के दिनों में एक के बाद एक ब्लॉगरों और धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं की हत्याओं का गवाह बने बांग्लादेश में ये हमला नए खतरों की दस्तक देता है। सुनिए बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार वात्सल्य राय से।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका का सबसे सुरक्षित गुलशन इलाका, कई दूतावासों वाले इस इलाके के विदेशियों और स्थानीय लोगों के पसंदीदा होली आर्टिसन बेकरी कैफे में रात 9 बजे के बाद मंजर अचानक बदल गया.
What police said, a group of conmen, they entered the restaurant in the night and they started.
चश्मदीदों का कहना है कि 8 से 9 चरमपंथी कैफे में दाखिल हुए और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी. कुछ ही देर में मौके पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन तब तक हमलावर कैफे के अंदर विदेशी नागरिकों समेत कई लोगों को बंधक बना चुके थे. हमले के बाद मौके पर पहुंचे बीबीसी संवाददाता अकबर हुसैन ने बताया, होटल के इतालवी मैनेजर हमले के बाद बच निकलने में कामयाब रहे.
रेस्टोरेंट मैनेजर एंड पर्सन टोल्ड अस दैट एटलीस्ट 20 फॉरेनर्स आर बीइंग.
अकबर बता रहे हैं कि उन्हें रेस्टोरेंट के मैनेजर और वहां से बचकर निकले एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि कम से कम 20 विदेशी अब भी अंदर फंसे हुए हैं. हथियारबंद लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया है. तथाकथित इस्लामी संगठन इस्लामिक स्टेट ने अपनी न्यूज एजेंसी अमाक की वेबसाइट पर एक बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली है. बांग्लादेश के आला पुलिस बल रैपिड एक्शन बटालियन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है. बटालियन के प्रमुख बेनजीर अहमद ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अंदर फंसे लोगों की जान बचाना है. अहमद ने कहा कि वो मामले को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाना चाहते हैं और बंधकों की रिहाई के लिए हमलावरों से बातचीत में जुटे हैं. हमले की वजह से पूरे इलाके में दहशत की स्थिति बन गई. कैफे के पास ही रहने वाली रशीला रहीम ने बताया,
10টা এরকম কি মাইকিং বাংলাদেশ কানে 10টা দিকে মাইকিং করে বলতেছে পুলিশ আপনি বের হয়ে এসে পড়েন মোস্টবি যারা আর কি সন্ত্রাসী.
রাত 10 বাজে কে करीब मैंने पुलिस को लाउड स्पीकर के जरिए उनसे बाहर आने को कहते सुना. शायद वो चरमपंथियों से बात कर रहे थे. उसके बाद हमने पुलिस अधिकारियों की कई बार आवाज सुनी. रात 8:30 बजे जब मैंने अपने घर से निकलने की कोशिश की तो मेरे ड्राइवर ने बताया कि बाहर कुछ हो रहा है. बाद में उसने कहा कि आप घर से बाहर न निकलें. ये थे रशीला रहीम के शब्द. एक अन्य स्थानीय निवासी तारिक मीर के मुताबिक हमला होने के करीब 3 घंटे बाद तक गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती रही. अमरीका ने बांग्लादेश की राजधानी में हुए हमले को लेकर चिंता जताई है. अमरीका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा,
लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस आर ऑन द सीन एंड रिस्पोंडिंग. आवर एम्बेसी इन ढाका इज करंटली कंडक्टिंग अकाउंटेबिलिटी.
स्थानीय सुरक्षा बल हमले का जवाब दे रहे हैं. ढाका दूतावास जवाबदेही सुनिश्चित कर रहा है. मैं आपको बता सकता हूँ कि चीफ मिशन अथॉरिटी के तहत काम करने वाले सभी अमरीकियों के प्रति हम जवाबदेह हैं. हम बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं. ये थे जॉन किर्बी के शब्द. ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जबकि बांग्लादेश में ब्लॉगरों और धर्मनिरपेक्ष लोगों की हत्याओं का सिलसिला जारी है. इन हत्याओं के लिए इस्लामी चरमपंथियों को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है. बांग्लादेश की सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हाल में देशव्यापी अभियान चलाया था.
बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा आपको सुना रहे थे वात्सल्य राय. अभी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव, जो ढाका का दौरा कर चुके हैं और गुलशन इलाके से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं. तो नितिन, संक्षेप में बताइएगा, जिस इलाके में ये हमला हुआ है वो कितना हलचल वाला, कितना व्यस्त इलाका है?
अशोक जी, ये समझिए, ये जो गुलशन इलाका है ये ढाका की जान है, लोग वहाँ की कहते हैं. और ये ऐसा इलाका है जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो दूतावास है वो है, ज्यादा से ज्यादा जो विदेशी नागरिक ढाका में बांग्लादेश में नौकरी करते हैं मैक्सिमम वहीं पर रहते हैं. और सबसे ज्यादा यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं और क्लब्स हैं. बीच में एक बहुत खूबसूरत सी लेक है जिसके चारों तरफ ये गुलशन इलाका बसा है. गुलशन 1, गुलशन 2 के नाम से जाना जाता है. और खास बात यह है कि यहाँ पर तमाम मस्जिदें भी हैं और तमाम चर्चेज भी हैं. लेकिन जो पिछले 1 साल से जिस तरह से बांग्लादेश में विदेशियों को निशाना बनाया गया है छिटपुट घटनाओं में इधर उधर, उसको देखते हुए फ्राइडे की शाम को जो ये हमला हुआ है ये मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बड़ा है और सबसे आसान टारगेट रहा होगा. हालांकि यहाँ पर सुरक्षा बेहतरीन रहती है.
जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव, आपका समय कम है. हाल के महीनों में बांग्लादेश में कई ब्लॉगरों और धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं की हत्या की जिम्मेदारी भी इस्लामिक स्टेट ने ली, लेकिन कभी बांग्लादेश की सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया. लेकिन कल के हमले के बाद क्या बांग्लादेश की सरकार के लिए अब देश में इस्लामिक स्टेट की मौजूदगी से इनकार करना मुश्किल होगा? यही सवाल किया मैंने ढाका में वरिष्ठ पत्रकार सैफुल हुदा से.
अगर सच बोले तो इससे पहले जो सब वाकया हुआ, जितना भी मर्डर और जितने भी इंसिडेंट्स हुए, उसको आप आतंकवादी नहीं बोल सकते, इसलिए कि वो मार के भाग जाना ये था आगे का इंसिडेंट. लेकिन ये जो कल हुआ, कल रात को जो कल शाम के बाद जो इंसिडेंट हुआ ये पहला बांग्लादेश में आतंकवादी का इंसिडेंट है। कल जो वाकया हुआ ऐसा डरावना इंसिडेंट कभी बांग्लादेश में नहीं।
तो आपको क्या लगता है कि इस हमले के बाद जो सुरक्षा की चुनौती है और उससे निपटने के जो तरीका है बांग्लादेश की सरकार का जो रुख और रवैया है उसमें बड़ा बदलाव आ सकता है?
कल शाम के बाद इसे एक नया चीज दिखाई दिया कि पूरा एरिया ही बंद कर दिया गया था। ऐसा सिक्योरिटी इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक ऐसी नया सिक्योरिटी डायमेंशन सामने आ गया है। अब ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज है ये सब कैसे संभालेंगे ये अभी भी साफ नजर नहीं आ रहा है। ये पता चले आज के दिन के बाद से क्या होता है नहीं होता है। और इसके लिए अभी भी तैयार बांग्लादेश शायद नहीं है। ऐसा इंसिडेंट ये कभी हम श्योर है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज है ऐसा सोचा भी नहीं था कभी।
आप एक तरह से मतलब सवाल उठा रहे हैं कि जो सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली संस्थाएं हैं बांग्लादेश में वो उनको आप इसके लिए तैयार नहीं पाते हैं?
बिल्कुल नहीं। आप ये इंसिडेंट देखिए ये कल शाम जब शुरू हुआ ये 8:30 बजे इंसिडेंट और हम लोग ये नेवी कमांडोज को आते हुए देखा है करीब रात 12 बजे के बाद। तो इससे पहले बहुत सारे बाकी सब ऑक्सिलरी फोर्सेस वहां पहुंच गए थे। तो ये स्ट्राइक पहले करना चाहिए था यानी कि आधा घंटा एक घंटे के अंदर ये जो स्पेशल फोर्सेस है वहां पहुंच जाना चाहिए था।
चरमपंथियों ने जो इलाका चुना है गुलशन इलाका चुना है जो कि एक डिप्लोमेटिक एरिया है इस्लामिक स्टेट जैसे चरमपंथियों की तरफ से एक क्या वो संदेश देना चाहते हैं कि वो कहीं भी अटैक कर सकते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल। इससे ज्यादा सिक्योर जगह और ढाका या बांग्लादेश में नहीं है। और ये इंसिडेंट होने के बाद एक घंटा या डेढ़ घंटा के अंदर ये सारा दुनिया में फैल गया था। CNN तो जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग शुरू किया तो वो अभी तक शायद चल रहा है और कोई न्यूज ही नहीं था CNN में। तो उन लोग भी इतना तवज्जो दे रहे थे इस इंसिडेंट को।
ये थे ढाका से वरिष्ठ पत्रकार सैफुल हुदा जो बता रहे थे कि कल हुए हमले के बाद बांग्लादेश के सामने किस तरह सुरक्षा की नई चुनौतियां पैदा हो गई हैं। बांग्लादेश में अगर इस्लामिक स्टेट ने इतना बड़ा हमला कर दिया तो जाहिर है भारत के लिए भी चिंता होगी। वात्सल्य राय मेरे साथ मौजूद हैं अखबारों के पुलिंदे के साथ। वात्सल्य, दिल्ली से छपने वाले अखबारों ने क्या कुछ लिखा है इस हमले पर और इसके अलावा और कौन सी खबरें अखबारों में हैं?
जी अशोक जी, जैसा आपने कहा दिल्ली से जो अखबार छपे हैं उन्होंने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसको पहली खबर बनाया है। खबर की हेडिंग कहती है जोरदार मुठभेड़ जारी, ढाका के रेस्टोरेंट में कई विदेशी बंधक बनाए गए। अखबार ने ये जानकारी भी दी है कि चश्मदीदों ने ट्विटर पर गोली चलने की आवाज़ सुनाई देने की जानकारी दी। रेस्टोरेंट की घेराबंदी किए हुए जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी तस्वीरें डाली हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को पहले पन्ने पर बॉक्स में जगह दी है और जानकारी दी है कि 60 लोगों को बंधक बनाया गया है। अखबार ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप के हवाले से बताया है कि भारतीय उच्चायोग के सभी अधिकारी सुरक्षित हैं और भारत पूरी तरीके से स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। स्टेट्समैन ने भी इस खबर को पहली खबर की तरह रखा है और इसको बताया है कि इटली और जापान के जो विदेशी नागरिक हैं उसमें इटली और जापान के नागरिक शामिल हैं
जी।
और इस अखबार ने बताया है कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसे पहली खबर बनाया है और इसको 26/11 जो मुंबई पर अटैक हुआ था उससे जोड़कर अपनी हेडिंग दी है
जी। बाकी इसके अलावा और क्या खबरें आज के अखबारों में जल्दी से
जो मैं देख रहा हूँ खबर उसमें एक विधि आयोग से सरकार ने समान नागरिक संहिता को लेकर जानकारी मांगी है। हिंदुस्तान टाइम्स
जी हाल के समय में
हिंदुस्तान टाइम्स हिंदुस्तान सभी ने इसको पहली खबर के तौर पर जगह दी है। इसके बाद राजनीतिक बहस शुरू होने की बात की गई है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि यूपी में कांग्रेस प्रियंका गांधी को प्रचार में उतारने का इरादा बना रही है। अमेठी और रायबरेली के बाहर भी ये
जी
कर सकती हैं प्रचार। और उत्तराखंड में जो बारिश से लोगों की जाने गई हैं उस खबर को भी ज़्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। और एक मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा सुब्रमण्यम स्वामी का जिन्होंने वादा किया है कि वो अब कम ट्वीट करेंगे। जनसत्ता ने एक दिलचस्प इस पर कार्टून बनाया है। एक चिड़िया उड़ रही है, स्वामी का चेहरा लगा हुआ है और उसका एक पंख टूट रहा है
जी। ट्वीट पे उनके काबू करने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए।
BBC इंडिया बोल। तनख्वाह बढ़ने के बावजूद केंद्र सरकार के कर्मचारी नाराज क्यों?
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ 11 जुलाई को देश भर में लाखों कर्मचारियों की हड़ताल। क्या वाकई सरकारी कर्मचारियों के जले पर नमक छिड़का गया है या उनकी नाराजगी बेबुनियाद है? इस बार इसी विषय पर इंडिया बोल में चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 2 जुलाई शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1800 11 7000 या 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो कार्यक्रम में जरूर शामिल होइएगा। और इधर बारिश का मौसम आते ही प्राकृतिक आपदाओं की खबरें मिलनी शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 11 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 17 लोग लापता बताए जाते हैं। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश के अलर्ट से लोग दहशत में हैं। कई जगहों पर लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
बृहस्पतिवार आधी रात से शुक्रवार तड़के तक चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में 6 से ज्यादा जगहों पर बादल फटने और भूस्खलन से मची तबाही के बाद बचाव और राहत का काम जारी तो है, लेकिन खराब मौसम से इसमें मुश्किलें आ रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत दिल्ली दौरे पर थे। शुक्रवार देर शाम वो देहरादून लौट आए। उनके मुताबिक बचाव और राहत का काम जारी है। स्थानीय प्रशासन के पास पर्याप्त इंतजाम है।
मैं दिल्ली में था, वहाँ से संपर्क में तो था, लेकिन यहाँ आकर के मैं जरा कंट्रोल रूम में और जिलों की भी सब हालत, क्योंकि इंटीरियर में गाँव में क्या स्थिति है सब मालूम करूँगा। वैसे हमने जिलाधिकारियों को पहले से ही पर्याप्त संसाधन दे करके रखे हैं और कुछ मदद करने की आवश्यकता होगी उन तक वो पहुंचाया जाएगा।
पिथौरागढ़ की डीडीहाट तहसील का बस्तड़ी गांव तो कमोवेश मलबे में दब गया है। यहां सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए राहत दल जुटे हैं। इसी तरह चमोली के घाट, दशोली और नंदप्रयाग विकास खंडों में अतिवृष्टि ने तबाही मचाई। दोनों जिलों में 60 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। करीब 150 मवेशी मारे गए। ये सभी इलाके जिला मुख्यालय से पूरी तरह अलग थलग हो गए हैं। मुख्यमंत्री रावत ने भी माना कि प्रभावित इलाकों में अनुमान से ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ हो सकता है।
एक ही गांव में बड़ा हादसा हुआ, पिथौरागढ़ में पूरी जमीन धस गई, पूरा ऊपर से धसाव आ गया, तो एक अनएक्सपेक्टेड लाइन पर हुआ है, इसलिए जान की ज्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है।
इस बीच बचाव और राहत कर्मियों के दलों को प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों और सेना के कुछ जवान इन जगहों तक पहुंचने में बेशक कामयाब रहे। भारी बारिश और भूस्खलन से मुख्य मार्ग, संपर्क मार्ग और पैदल मार्ग अवरुद्ध होने से इन गांवों के लिए रवाना हुई कई बचाव टुकड़ियां रास्ते में ही फंस गईं। हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं हो पा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में संचार सेवाएं भी ठप हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग में उपनिदेशक संतोष बडोनी।
निर्देश यही है कि जल्द से जल्द जो लोग बताए जा रहे हैं कि मलबे में दबे हैं, उनको जितनी जल्दी हो सके वहां से निकालें, क्योंकि जो अगर किसी की जिंदगी बच सकती है तो वो पहली प्रायोरिटी।
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह पहाड़ों से मलबा गिर रहा है। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुके रहने को कहा गया है। भारी से बहुत भारी बारिश की मौसम विभाग की चेतावनी के 72 घंटों में से कुछ घंटे बीत गए हैं। राज्य में भागीरथी, अलकनंदा, भिलंगना, मंदाकिनी, काली, सरयू जैसी नदियां उफान पर हैं। मैदानी इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। संवेदनशील जगहों में स्कूलों को फिलहाल बंद रखने का निर्देश दिया गया है। शिव जोशी, बीबीसी देहरादून।
और उधर पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में बीते कई दिनों से बारिश हो रही है। राज्य के वेस्ट कामेंग जिले में कल भूस्खलन की वजह से एक इंस्पेक्शन बंगला और 5 घर गिर गए, जिससे 10 लोग मारे गए हैं। गुवाहाटी से पूरे ब्यौरे के साथ दिलीप शर्मा।
पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन की एक घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में बीते कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के असर से वेस्ट कामेंग जिले के भालुकपोंग टिपी क्षेत्र में जमीन धसक गई, जिसके चलते एक सरकारी इंस्पेक्शन बंगला और आसपास के 5 घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए। पुलिस ने इस घटना में 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। 3 लोग घायल हैं। अब तक 5 शव निकाले जा चुके हैं और बाकी के शवों को मलबे से निकालने के लिए राहत अभियान जारी है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखुआ ने भूस्खलन से मरने वाले लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है। राजभवन से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में शोक व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने भूस्खलन में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को राहत कोष से 1,00,000 रुपये देने की घोषणा की है। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
पाकिस्तान की सरकारी समाचार एजेंसी एपीपी में काम करने वाले एक हिंदू पत्रकार ने अपने साथ अछूत जैसा व्यवहार होने की शिकायत की है। ये पत्रकार साहिब खान ओद के नाम से कॉलम लिखते हैं, लेकिन जैसे ही उनके हिंदू होने की बात उनके साथियों को पता चली तो उन्होंने साहिब खान के साथ उठना बैठना बंद कर दिया और खाना पीना भी बंद कर दिया, यहाँ तक कि उनके लिए पानी पीने के गिलास तक अलग कर दिए गए। बीबीसी उर्दू के हमारे साथी रियाद सुहेल ने उनसे बात कर पूरा हाल जानने की कोशिश की।
बेसिकली एपीपी इस्लामाबाद में रहा हूँ, फिर हैदराबाद में आया था, तो वहाँ से फिर मुझे यहाँ ट्रांसफ़र किया गया ना 29 तारीख को, तो मेरा बेटा, क्योंकि मैंने शिफ्टिंग भी की क्योंकि मेरी ट्रांसफ़र हो गई तो मैं शिफ्टिंग कर रहा था, तो मैं बच्चे को ले आया। जब उसने कहा मुझे सीवीयू घुमाएं, संडे का दिन था, तो मैं संडे के दिन गया, उसको घुमाया फिराया, और जब मैं वापस आया तो उसने, बच्चे ने मुझे कहा कि मुझे ऑफ़िस का भी विज़िट कराएं, क्योंकि मैं दरअसल अपना नाम, मैं डान में ब्लॉग भी लिखता हूं, तो मेरा नाम साहिब खान के नाम से मैं लिखता हूं, तो इसी वजह से मुझे ज़्यादा लोग जो साहिब खान से नाम जानते हैं तो उनको नहीं पता कि ये हिंदू है, मुस्लिम है या किस मज़हब से। लेकिन जब मेरा बच्चा जो है वहाँ गया तो उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया था, उसका नाम राजकुमार था, तो उसकी वजह से जो काफ़ी लोग थे जो उनको बड़ा डिस्टेंस हुआ गया कि यार ये तो हिंदू है। ये बेरोची साहब ने बुलाया मंडे के दिन, और शाम को शायद 5-6 बजे हुए थे, मुझे बुलाया, कह रहा लगे यार आप इस तरह करें कि अपना गिलास और दूसरी जो चीज़ें हैं आप अलग करें, क्योंकि कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर ये क्या मना मसला है जी? नहीं यार बस छोड़ें, अभी ये मसला है इसको छोड़ो, अब काम करो अपनी चीज़ें अलग।
तो ये जो आप बता रहे हैं कि मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर आए, ये आपको आए हैं या उनको आए?
वो दरअसल मिनिस्ट्री ने एक जो बड़ा, अभी मुझे समझ में नहीं आया, मुझे कोई भी इंटीमेशन नहीं, उनको बता रहे हैं, क्योंकि उनकी वो चौधरी परवेज असलम है उनकी, क्योंकि उनका ताल्लुक भी पंजाब से है, वो जो एपीपी में लोग हैं वो भी उनका ताल्लुक है, और इसके जो 2-3 बंदे हैं जो मुझे पता है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहा भी हूँ, मैं एपीपी में, तो वहाँ इनके हैं जो जो मैनेजमेंट में, तो वो उनको कह रहे हैं कि भाई आप किसी तरह से इससे मना के और वो चीज़ करवाओ के, ये नहीं है। अगर मैं अभी इसको मैं रिट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे होगा, पता नहीं क्या हो सकता है मेरे लिए नुकसानदायक, लेकिन वो अगर मैं झूठ बोलता तो फिर मैं कहता कि यार मैंने किया। लेकिन एक चीज़ है, जिन्होंने लोग सामने एपीपी के बैठे हैं, जिन्होंने ये देखा है, जिन्होंने सुना है, जिनसे बात हुई है, अब मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन अब वो मान ही नहीं रहा कि भाई कुछ नहीं हुआ, ये सर पहले कह रहा था फ्लो हुआ, फिर कह रहा कोई नहीं है, कल कोई एक आधी प्रेस रिलीज जारी की है कि भाई प्रेस रिलीज, खुद मेरी शिकायत उसी से है, उसने इन्वेस्टिगेशन की है और खुद ही रिलीज प्रेस रिलीज अपने नाम से कर रहा है, अब ये तो ज्यादती है।
अच्छा ये बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है?
मेरा दादू डिस्ट्रिक्ट से है, मेरा वहाँ प्यारो शुगर मिल, वहाँ पे मेरा गांव है ट्रगा, वहाँ से हूँ मेरा ताल्लुक है।
तो वहाँ पर आपके गांव में कभी आपके साथ ऐसा कोई वाक्या पेश आया?
नहीं, वो अभी तो उस टाइम पे नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे जो सिंधीज़म और जो सिंधी का कल्चर था उसमें हमें इतनी तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन जैसे अभी रिलीजियस सेंटीमेंट बढ़ रहे हैं तो उसके हवाले से हमें थोड़ा सा अभी हो रहा है। हम जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, तो उसमें ये मसला, हिंदू तो हैं लेकिन हम गरीब हैं, हमें सोशल कैपिटल भी नहीं है, पॉलिटिकल कैपिटल भी नहीं है, और इकनॉमिकली भी हम जो वीक हैं, तो हमारे पास, और फिर रिलीजन जब आ जाता है हिंदू तो उसमें और हमारे लिए, तो थोड़ा समाज में कुछ लोग होते थे, लेकिन अभी जो रिलीजियस जैसे हुआ है तो उसमें वो हुआ, लेकिन हालांकि हमने वहाँ गाँव में पढ़ा है, दादू में पढ़ा हूँ, मैं सिंधनुसी में पढ़ा हूँ, तो मुझे कभी इस तरह महसूस नहीं हुआ, लेकिन अभी जब मैंने काम किया है, मिसला इस्लामाबाद में काम किया है, तो लोगों ने मना अगर कहा नहीं होगा तो महसूस करवाया होगा ज़रूर।
तो ऐसा नहीं लगता कि अगर आपने नहीं लिख के दिया तो आप अपनी जॉब भी गंवा बैठते?
अभी ये नहीं पता, क्योंकि अगर देखें अभी मीडिया में भी आ गया, सिविल सोसाइटी दूसरे लोगों को पता भी है, अभी ये तो वन साइडेड है, गवर्नमेंट का अगर मेरी जॉब चली जाए तो वन साइडेड हो भी सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रांग है। अभी जॉब का भी है, जॉब तो माइनर है, अगर कहीं और भी रिलीजियस इश्यूज हैं, आपको पता है कि वो अगर उस लेवल पे जाता है तो उसमें मुझे थ्रेट्स और भी हो सकते हैं, लाइफ का भी थ्रेट हो सकता है।
ये थे पाकिस्तान के एक हिंदू पत्रकार जो अपने साथ अछूत जैसा व्यवहार होने की शिकायत कर रहे थे। उनसे बात कर रहे थे बीबीसी उर्दू के हमारे साथी रियाद सोहेल। और इसके बाद अब खबरें विंबलडन की। लंदन से हाजिर हैं अपूर्व कृष्ण।
विंबलडन 2016 अपडेट।
विंबलडन पर लंदन से बीबीसी हिंदी सेवा की खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। लंदन में कल भी बूंदाबांदी होती रही जिससे कई मैचों पर असर पड़ा। इनमें सबसे ज्यादा दिलचस्प मैच दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का रहा, जिसे बारिश के कारण बीच में ही रोक देना पड़ा। पिछली दो बार से लगातार विंबलडन विजेता रहे जोकोविच इस मैच में काफी मुश्किल में नजर आ रहे थे। तीसरे दौर में उनका मुकाबला दुनिया में 42वें नंबर के खिलाड़ी अमेरिका के सैम क्वेरी से था और वे इस मैच में दो सेटों से पिछड़ चुके थे, मगर तभी बारिश शुरू हो गई और खेल रोक देना पड़ा। अब आज सबकी निगाहें इसी मैच पर रहेंगी और इस वक्त चारों के चारों ग्रैंड स्लैम मुकाबलों के विजेता जोकोविच को अगर अपने खिताब की रक्षा करनी है तो उन्हें लगातार तीनों सेट जीतने होंगे। लेकिन 7 बार के विंबलडन चैंपियन और दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी रोजर फेडरर ने कल ब्रिटेन के डेनियल इवांस को आसानी से हरा दिया। स्विस खिलाड़ी फेडरर ने मैच सीधे सेटों में 6-4, 6-2 और 6-2 से जीतकर चौथे दौर में जगह बना ली है। मगर कल सेंटर कोर्ट पर एक बड़ा उलटफेर हुआ जब दुनिया के 165वें नंबर के खिलाड़ी अर्जेंटीना के खुआन मार्टिन डेल पोत्रो ने दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका को मात दे दी। 2014 के ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बाद वे पहली बार कोई ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता खेल रहे थे और वावरिंका को हराने के बाद वे भावुक हो गए।
After my third surgery, I'm trying to tennis again. It's like my second or third career in my short.
मैं अपनी सर्जरी के बाद फिर टेनिस खेल रहा हूँ। मेरे लिए ये एक नए करियर की तरह है। मुझे नहीं पता मैं टॉप खिलाड़ियों में शामिल हो सकूंगा या नहीं, लेकिन मैं केवल फिर खेलना चाहता हूँ क्योंकि मैं 2 साल तक घर बैठा रहा और अब मुझे मजा आ रहा है। मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे लग रहा है मैं फिर से जी उठा हूँ। क्वान मार्टिन डेल पोत्रो के शब्द। महिलाओं के वर्ग में कल दोनों ही विलियम्स बहनों के मैच थे और दोनों जीतीं, लेकिन इसके लिए दोनों को ही काफी पसीना बहाना पड़ा। सरीना विलियम्स का मुकाबला था उन्हीं की हमवतन अमरीकी खिलाड़ी क्रिस्टीना मैकहेल से। दुनिया की 65वें नंबर की खिलाड़ी क्रिस्टीना ने दुनिया की पहले नंबर की खिलाड़ी सरीना को जबरदस्त चुनौती दी, मगर 34 वर्षीय सरीना ने मैच के बाद कहा कि उनका मनोबल बहुत मजबूत है। मुझे पता है मुझे मानसिक तौर पर कोई नहीं तोड़ सकता, यह आसान नहीं। तो तीसरे सेट में सर्विस ब्रेक होने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे दिमाग से खेलना होगा और मैंने वही किया। सरीना विलियम्स के शब्द। और सरीना की बड़ी बहन और 5 बार की विंबलडन चैंपियन वीनस विलियम्स प्रतियोगिता के चौथे दौर में पहुंच गई हैं। 36 वर्षीय अमरीकी खिलाड़ी ने अपने से 17 साल छोटी खिलाड़ी रूस की दारिया कासत्कीना को हराया। कल भारतीय खिलाड़ियों के लिए दिन अच्छा रहा। पुरुषों के डबल्स में लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना दोनों ने अपने अपने डबल्स मैच जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। अपूर्व कृष्ण, बीबीसी विंबलडन।
विंबलडन का हाल आप सुन रहे थे। कार्यक्रम समापन की तरफ, इससे पहले कि हम मुख्य समाचारों की तरफ जाएं, एक नज़र bbchindi.com के पन्ने पर, जहां सबसे बड़ी खबर जाहिर है ढाका में जो हमला हुआ है उसकी खबर लगी है। हमलावरों के कब्जे में 20 विदेशी नागरिक, ये हमारी सबसे पहली खबर है। इसके साथ ही देखेंगे तो आप तस्वीरें भी हैं ढाका में हमले को लेकर। आप ज़रूर आइए bbchindi.com के पन्ने पर। और अब बारी मुख्य समाचारों की।
बीबीसी समाचार। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक कैफे में हथियारबंद हमलावरों ने 20 विदेशियों समेत कई लोगों को बंधक बना लिया है। इस हमले में कम से कम 2 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई जबकि 30 अन्य लोग घायल हुए हैं। अमरीकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि बीते महीने इराक के मोसूल शहर में अमरीकी गठबंधन सेना के हवाई हमले में इस्लामिक स्टेट के 2 प्रमुख चरमपंथी मारे गए हैं। अमरीकी प्रशासन ने बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए आम लोगों का आंकड़ा जारी किया है। ऐसे हमलों में 64 से लेकर 116 लोगों की मौत हुई है। ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अफ्रीकी देश गिनी बिसाऊ के प्रशासन ने जीका वायरस के 3 मामलों की पुष्टि की है। सरकार का कहना है कि ये मामले देश के दक्षिणी हिस्से में सामने आए हैं। बीबीसी समाचार।
तो आप सुन रहे थे बीबीसी की हिंदी सेवा से कार्यक्रम नमस्कार भारत। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। ठीक एक घंटे बाद आपसे मुलाकात होगी विश्व भारती में और सुनाएंगे आपको अपनी खास पेशकश चलो रियो। अभी अशोक कुमार को दें अनुमति। नमस्कार।